राम कथा को ही आगे बढ़ाते हुए आज एक प्रातकालीन तृतीय और अंतिम सत्र में हम श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद का ये 11 अध्याय का एक श्लोक पढ़ेंगे और कुछ चर्चा और राम स्मरण यथासंभव करेंगे। श्लोक संख्या 22। स यै स्पृष्टो अभिदृष्टो वा संविष्टो अनुगतोऽपि वा कोशलास्ते ययुस्थानम् यत्र गच्छन्ति योगिनः। जहां योगी जाते हैं वहां भगवान भी गए, श्री राम लौटे। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। भगवान रामचंद्र अपने धाम को लौट आए जहां भक्ति योगी जाते हैं। यही वह स्थान है जहां अयोध्या के सारे निवासी भगवान को उनकी प्रकट लीलाओं में नमस्कार करके, उनके चरण कमलों का स्पर्श करके, उन्हें पितृतुल्य राजा मानकर, उनकी बराबरी में बैठकर या लेटकर या मात्र उनके साथ रहकर उनकी सेवा करने के बाद वापस आए। भगवान भगवद्गीता 4:9 में कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जो मेरे प्राकट्य लीला की दिव्य प्रकृति तथा मेरे कार्यकलापों को जानता है, वह इस शरीर को त्यागने के बाद इस भौतिक जगत में फिर से जन्म नहीं लेता, अपितु हे अर्जुन वह मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। यह इसकी पुष्टि हुई है। अयोध्या के सारे निवासी जिन्होंने प्रजा के रूप में भगवान रामचंद्र का दर्शन किया, दास के रूप में उनकी सेवा की, उनके साथ मित्र या अन्य रूप में बैठे बोले या उनके शासन काल में उपस्थित थे, वे सभी भगवत धाम वापस गए। लेकिन भक्त की भक्ति पूर्ण होती है, जिस भक्त की भक्ति पूर्ण होती है वह इस शरीर को त्याग कर उस विशेष ब्रह्मांड में प्रवेश करता है जहां भगवान रामचंद्र या भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। तब उस प्रकट लीला में विभिन्न पदों पर रहकर भगवान की सेवा करना सीखकर भक्त अंत में सनातन धाम पहुंचता है। भगवद गीता में इस सनातन धाम का भी उल्लेख मिलता है, परस्पस्मात् भाव अन्य व्यक्तो व्यक्ता सनातनः। जो भगवान की नित्य लीलाओं में प्रवेश पा जाता है वह नित्य लीला प्रविष्ट कहलाता है। यह स्पष्ट तौर पर समझने के लिए कि रामचंद्र जी वापस क्यों गए, यहां यह उल्लेख हुआ है कि वे उस विशेष स्थान को गए जहां भक्ति योगी जाते हैं। निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवत के कथन से इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि इसका अर्थ यह है कि भगवान अपने ही तेज में प्रविष्ट हुए, अतएव वे निराकार हो जाते हैं। किंतु भगवान तो पुरुष है और उनके भक्त भी पुरुष है, निसंदेह सारे जीव भी भगवान के समान भूतकाल में पुरुष थे, वर्तमान काल में भी पुरुष है और इस शरीर को त्यागने पर भी पुरुष रहेंगे। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी हुई है। सयै स्पृष्टो अभिदृष्टो वा संविष्टो अनुगतो पिवा कोशलास्ते ययुस्थानं यत्र गच्छति योगिनः। अवतरति संभवामि युगे युगे, भगवान अवतार लेते हैं। केह बोले पूरबे, केह बोले पूरबे रावण वधीला। कोई कोई कहते हैं क्या हुआ, पहले क्या हुआ था, इसी भगवान ने रावण का वध किया था, तो बोलो के वैभव लीला प्रकाश करीला। और यही वो कृष्ण भी है जो गोलोक वृंदावन की लीला को इस पृथ्वी पर प्रकट करते हैं। सही गौ जय गौ, सही कृष्ण सही जगन्नाथ। और यही तो गौरांग महाप्रभु, यही वे कौन है, कृष्ण है और यही जगन्नाथ भी है और यही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी है, ऐसा निवेदन है। वासुघोष बोले, वासुघोष बोल रहे करी जोड़ हाथ, करी जड़ हाथ नहीं जड़ हाट, वैष्णव गीत में लिखा है करी जड़ हाथ या जोड़ हाथ, हाथ को जोड़ के बड़े ही विनम्र बन के अपना साक्षात्कार कह रहे हैं वासुघोष नाम के श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद जो खूब गाया करते थे, गीत गाते थे भगवान के। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में सार्वभौम मठाचार्य को दर्शन दिए, एक विशेष दर्शन जो षडभुज गौरांग कहलाता है। वो रूप षडभुजाए थे, उस रूप में दो भुजाओं में धारण किए थे धनुष और बाण, दूसरे दो हाथों में कमंडलू और दंड और दूसरे दो हाथों में क्या कहा क्या बचा बंसी धारण किए थे भगवान। तो हो गए कि तीन हो गए, थ्री इन वन, तीन रूप एक ही रूप में। वैसे तीन ही क्यों, तीन लाख रूप वैसे एक रूप में संभव है। मत्तः नत मत्तः फ्रॉम मी कम्स एवरीथिंग, अहम सर्वस्य प्रभव, अहम सर्वस्य प्रभव। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये दिखाए कि वे स्वयं और श्री कृष्ण और श्री राम तीन अलग अलग व्यक्तित्व नहीं है, एक ही है। फिर एक ही है, एक ही एक, इसका इतना प्रचार हो जाता है कि हम भी वही है तत्वमसी। तत् तत् मतलब वो भगवान, त्वम असी तुम ही तो हो, वो भगवान तुम ही हो तत्वमसी। ये मायावादियों का ये महावाक्य है। इस प्रकार प्रचार बढ़ते 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 भगवान आ जाते हैं, कभी श्याम बन के तो कभी राम बन के, तो फिर कई साई राम बन के, तो फिर गणेश बन के, और फिर रजनीश बन के, और इसका कोई अंत ही नहीं है। लेकिन देयर हैज टू बी सम बॉर्डर लाइन, कह रहे हैं कई परम को रुकना होगा। तो तात्पर्य में प्रभुपाद यहां कह रहे हैं, क्योंकि श्लोकों में आया है कि भगवान अपने तेज आत्म ज्योतिर अगात ततः, भगवान अपने ही ज्योति में समाए अपने को, तत्पश्चात वे ब्रह्म ज्योति से परे अपने धाम वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुए। ये चालाकी है, युक्ति है, या वैसे आचार्यों की, वैष्णव आचार्यों की? ब्रह्म शब्द दिखाई देता ही मायावादी बड़े उल्लासित होते, भगवान कैसे हैं, निराकार है, निर्गुण है, सिद्ध हो गया। देखो लेकिन भगवान के भक्त जानते हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, भगवान के तीन स्वरूप है, तीन अवस्था है, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। तो हुआ आत्म ज्योति में भगवान गए अगात, पिछले कुछ प्रवेश किया उन्होंने ऐसे। ये 18वां श्लोक, हम लोग श्लोक संख्या 22 पढ़ रहे हैं, तो कुछ ही श्लोक 19वें श्लोक में ये ज्योति की बात, आत्म ज्योति रगात ततः। तो भगवान श्री प्रभुपाद इसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। वैसे कभी कभी सुखदेव गोस्वामी को भगवान कहा है, या नारद मुनि को भी भगवान कहा है, और कुछ भगवान कैसे हो गए, भगवान कैसे हो। तो भगवान का संबोधन क्या होता है, भगवान को अगर हम संबोधित करना चाहते तो क्या कहेंगे? नहीं नहीं, भगवान कहेंगे, हे भगवान नहीं कहेंगे, हे भगवान कहेंगे। संबोधन समझते हैं, संबोधन एड्रेस करना है, तो भगवान कहें। तो सिर्फ ये बात प्रचलित है कहने के, भगवान कैसे हो। तो कोई विशेष ज्ञान, कोई विशेष वैराग्य, विशेष सौंदर्य, विशेष शक्ति का जहां प्रदर्शन होता है किसी व्यक्ति में भी, तो कभी कभी ऐसे उनको भगवान का, भगवान। पौरुषम दृश्यु, कुछ विशेष शक्ति, भूतिर नीतिर मतिर भूति, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर। भगवान किसी को शक्ति देते हैं, अपने भक्ति की शक्ति देके फिर उनसे कुछ विशेष कार्य करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम लोग शाक्तवेश अवतार भी कहते हैं, या कभी कभी भगवान भी कहते हैं। लेकिन हमको भगवान का जय, राधा कुंजी बिहारी की जय, भगवान का जो विष्णु तत्व है, एक विष्णु तत्व है तो फिर दूसरा कौन सा तत्व है, जीव तत्व है, और फिर तीसरा शक्ति तत्व है। ये मुख्य तीन तत्व या तीन प्रकार की शक्तियां है भगवान की। इस प्रकार बहुत ही अथक प्रयास और क्या क्या चिंतन कष्ट करते हुए प्रभुपाद ऐसे तात्पर्य लिखे हैं, इसलिए कुछ थोड़ा पल्ले पड़ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। ये जो साइंस है, लीला चल रही है, यह श्री राम की, तो श्रील प्रभुपाद बीच में आओ, जन्म कर्म चमई दिव्यम, भाइयो बहनों एवं यो व्यक्ति तत्वतः, भगवान श्री राम को तत्वतः समझो, केवल भावुकता से काम नहीं होगा। और आपने अगर लक्ष्य बनाया, आपका भी क्या लक्ष्य है, राम के धाम लौटना, कृष्ण के धाम, हरि के धाम लौटना अगर जीवन का लक्ष्य है, तो जागो, उठो और दौड़ पड़ो, कूद पड़ो। किस रास्ते से जाना है आगे, वह हाथी है ना, वहां जाना पैदल ही है, पदयात्रा करते हुए, लेकिन किनके पीछे जाना है, महाजनों एन गतः सपंथा, उस मार्ग पर जाना है जिस मार्ग पर कौन गए हैं, महाजन गए। तो सभी महाजन नहीं है, सभी भगवे वस्त्र पहने हुए महाजन नहीं कहे जा सकते, उनकी भी सूची है कौन महाजन है कौन महाजन नहीं है, इसका भी शास्त्र है। महाजनों के, महात्माओं के कुछ वैसे बाहरी लक्षण है, कोई गौण लक्षण है, तो गेरुआ वस्त्र भी महात्मा का एक क्या हुआ, लक्षण हुआ, या उसने कोपीन पहनी है वैराग्य का लक्षण हुआ, और क्या ऐसा कुछ लक्षण, लक्षण हाँ वो धाम में रहता है तो महात्मा है, लेकिन ये गौण लक्षण हुए महात्माओं के, बाहरी लक्षण हुए महात्माओं के। भगवान जब महात्मा की परिभाषा सुनाते हैं तो उन्होंने क्या कहा, महात्मनस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति माश्रितः, कि इस महात्मा ने दैवी प्रकृति का आश्रय लिया हुआ है। तो दैवी प्रकृति कौन है, राधा रानी वो दैवी प्रकृति है, सीता ठाकुरानी वो दैवी प्रकृति है, देवी नहीं, ये नवरात्र में जो चल रही वो देवी नहीं, इस देवी के भक्त महाजन नहीं कहे जा सकते, या अलग अलग शक्ति है भगवान, बहिरंगा शक्ति है ये देवी, क्या है भगवान की बहिरंगा शक्ति, तट और हम लोग तटस्थ शक्ति है, और भगवान राधा रानी सीतारा ठाकुरानी ये सब अंतरंगा शक्ति है भगवान की, हम लोग बीच में है तटस्थ। छाएव यश भुवनानी विभर्ति दुर्गा, दुर्गा छाया है, दुर्गा माया है, मा या मतलब जो, जो मां जो नहीं है, मां मां मतलब नहीं है, मां मतलब नहीं है, या जो नहीं है, या उसको है मानना क्या हुआ, माया हुआ। तो छाया को जो माया है उसी को है हम लोग समझ रहे हैं, ये बड़ी भारी भूल है, तो इसीलिए ये अनिवार्य है, अत्यंत आवश्यक बात है, इसलिए प्रभुपाद समझाए, तात्पर्य समझ, तात्पर्य के बाद तात्पर्य समझाए, केवल लीला ही नहीं सुनाए। लोग लीला सुनना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन साथ में शास्त्र या उसका तत्व भी सीखना समझना अनिवार्य है। जय श्री राम, जय श्री राम। हम लोग थक गए राम राम कह के, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अपना षडभुज गौरांग रूप दिखाया, उसमें राम है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक राम भक्त थे, वैसे हम सभी कृष्ण के भक्त, राम के भक्त भी हो सकते हैं, राम का भक्त कृष्ण का भक्त इन जनरल, लेकिन कुछ तो राम के ही भक्त होते हैं, राम के नित्य दास जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्य दास हम लोग कहते हैं तो वह, लेकिन कृष्ण कृष्णेर दास मतलब रामेर दास भी है तो कृष्णेर दास हम लोग कह सकते हैं, या नरसिंहेर दास, कोई माताएं हमें कल मिलने आई थी तो हमने पूछा किसके दास दासी किसकी आराधना करते हैं, हमने नरसिंह कहा, हम नरसिंह के भक्त हैं, नरसिंह भगवान, तो हर जीव का भगवान के किसी अवतार के साथ शाश्वत संबंध होता है। तो चैतन्य महाप्रभु के समय एक ऐसे भक्त थे राम के भक्त, जो उस लीला में मुरारी गुप्त के नाम से प्रसिद्ध थे, प्रकट थे, क्या नाम, मुरारी गुप्त, मुरारी गुप्त, वो ऐसे वैद्य थे, डॉक्टरी करते थे और लोगों के भव रोगों से भी मुक्त करते थे, कोई खांसी जुकाम को भी हटाते और फिर उनके पास कुछ विशेष घड़ा था उसका पानी पिलाते लोगों को, वो पीने से भव रोग से मुक्ति, पुनर्जन्म न विद्यते, हम चरणामृत पीते वो जल कैसा होगा, भगवान के कुछ अभिषेक का जल होगा, वो जल पिलाते और जो भगवान के चरणों का जल पीता है तो पादोदकम पीत्वा, विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, सर्व व्याधि से मुक्त, भव रोग से मुक्त, ऐसे वे विशेष वैद्य थे मुरारी गुप्त, लेकिन थे वे राम के भक्त, रघुनाथ के भक्त थे। तो अन्य सभी तो कृष्ण की भक्ति करते थे, तो उन सभी ने सोचा कि ये हमारे मध्य में एक ही राम के भक्त है, चलो इनको भी हम लोग कन्वर्ट कराते हैं, उनका भी धर्मांतर कराते हैं, कुछ उनके अवतारांतर करते हैं, हम राम के वो राम के हम कृष्ण के, तो उनको उन्होंने कृष्ण भक्तों ने घेराव किया, उनको बीच में बिठाया और ऐसे ब्रेन वॉशिंग किया, ऐसे क्या क्या समझाया बुझाया, हाँ अरे हम इतने सारे हैं और तुम पागल हो गए क्या, ऐसे शब्दों में नहीं कहा, हम लोग की कलयुग की भाषा है तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो पागल थोड़े ही थे, हम जैसे ऐसी भाषा का बड़ी प्रांजल भाषा, बड़ी परिष्कृत भाषा, सभ्य समाज में एक विशेष भाषा बोली जाती है, मलमूत्र कहेंगे, टट्टी पेशाब नहीं कहेंगे, टट्टी पेशाब, दूसरी शब्दावली है सभ्य समाज में बोलने की, जो सभा के समक्ष जिसको प्रस्तुत किया जा सकता है ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, वो सभ्य है, ये व्यक्ति क्या है, सभ्य है, मतलब सभा में आ सकता है, सभा के समक्ष उसका परिचय भी हो सकता है, सभा के समक्ष कुछ भाषण देने की योग्यता ये रखता है, इसीलिए ये कौन है, सभ्य है, इज अ जेंटलमैन, ये नहीं कि अभी वो टॉयलेट से निकला जिस पर ऊपर क्या लिखा है, जेंटलमैन एंड लेडीज, दो टॉयलेट्स होते ना, ये जेंटलमैन के लिए है और ये लेडीज के लिए है, तो केवल जेंटलमैन नाम का शीर्षक जिस टॉयलेट के ऊपर था, उस टॉयलेट से निकला, उस टॉयलेट का उपयोग किया, इसलिए आई एम कौन, मैं कौन हूं, जेंटलमैन। देखो ऐसा नहीं है, तो जेंटल भी तो होना चाहिए। मैन कैसा, जेंटल नॉट रफियन। तो इन सभी कृष्ण भक्तों ने खूब प्रचार किया मुरारी गुप्त को, और फिर अंत में कुछ हां में हां मिला तो दिए, हां ठीक है हम भी आज से किसके भक्त, हम कृष्ण के भक्त। तो फिर बैठक समाप्त हुई और अपने अपने घर लौटे, मुरारी गुप्त भी अपने घर लौटे। तो उस रात को पूरे रात उन सोए नहीं, एक उन्होंने वादा किया था या स्वीकार किया था, हाँ 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 चलो हम भी कृष्ण के भक्त मान लेते हैं, या भक्ति राम कृष्ण ही करते हैं शायद, ऐसी मान्यता हमारी हुई है, लेकिन ऐसे संभव नहीं हो पाया उनके लिए। जैसे आवाज आ रही, नहीं 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 ये संभव नहीं, तुम तो मेरे भक्त हो, तुम तो राम के भक्त हो, तुम राम के नित्य दास हो। तो दूसरे दिन मुरारी गुप्त पुनः लौटे उस सभा में, भक्तों के, कृष्ण भक्तों के समाज में, और क्षमस्व क्षमा याचना किए, नहीं नहीं मैंने वादा तो किया था, मैंने मान तो लिया था कि मैं कृष्ण का भक्त हूं या बन जाता हूं, लेकिन ऐसे मैंने प्रयास तो किया, स्वीकार किया, प्रयास भी किया, लेकिन ये मुझसे संभव नहीं होगा, मुझे रघुनाथ की भक्ति करने दो, मुझे राम की भक्ति करने दो, रामचंद्र भगवान की जय श्री राम। तो ये मुरारी गुप्त वैसे कोई साधारण भी भक्त नहीं थे राम के तो असंख्य भक्त है, लेकिन ये मुरारी गुप्त कौन से राम भक्त थे, राम भक्त हनुमान थे, राम भक्त हनुमान प्रकट हुए राम की चैतन्य महाप्रभु के लीला में। तो वही हनुमान जो हुआ राम के समय के हनुमान, जब भीम को मिले थे बद्रिकाश्रम के पास एक स्थान है, दोनों का मिलन हुआ, ये बूढ़े वानर के रूप में पूंछ को फैला के बैठे थे, और वहां से कोई गली रास्ता, कोई सांकरी गली, थोड़ा ही स्थान था, तो भीम जा रहे थे, फ्लावर वैली वैसे जा रहे थे, फूल का क्या कहते, फूल का फ्लावर वैली अंग्रेजी में, उसका हिंदी का नाम भी है, द्रौपदी के लिए फूल। तो रास्ते में ये लंगूर, ये वानर बैठा है, ए हटा दो अपनी पूछ को। तो इस बंदर ने कहा, बाबा हम बहुत बूढ़े हैं, पूछ को नहीं उठा सकते, इतनी भी शक्ति अभी नहीं रही, तुम भी उठा के बाहर कर दो या अलग ढकेल दो मेरी पूछ को और आगे बढ़ो, क्यों परेशान कर रहे हैं। तो भीम बड़ा क्रोध भी था मन में, कुछ गर्व भी था, तो उस पूछ को उठाने का प्रयास ऐसा ही, ये तो बाएं हाथ का खेल है मेरे लिए, इस बंदर की पूछ को ऐसा ही हटाऊंगा, रास्ता फेरा, मैं आगे जा सकता हूं। तो बाएं हाथ से भी काम नहीं बना और बाएं और दाहिने दोनों हाथ से भी काम नहीं बना, कौन है ये बंदर। फिर उस बंदर ने वैसे दर्शन दिया था किस रूप में, हनुमान थे। फिर दोनों ने फिर क्या किए, गले लगाए। दो कौन है, दोनों भाई है, हनुमान और भीम भाई भाई। तो उस वक्त हनुमान जी ने कहा, जब युद्ध होगा, होने वाला है अब महाभारत का युद्ध, मैं भी, मेरे राम अब कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं, तो उनकी मैं सहायता करूंगा या उनके भक्तों की मैं सहायता करूंगा। ईशाम पक्षी जनार्दन, जनार्दन के पक्ष से मैं लड़ूंगा, आपके साथ मैं भी रहूंगा। तो वहां वो किया हुआ वादा हनुमान जी निभाए और महाभारत युद्ध में हनुमान जी किस रूप में, कहां थे हनुमान महाभारत युद्ध में, अर्जुन के रथ पर जो ध्वज था उस पर विराजमान थे। कोई समझेगी तो पेंटिंग है, ये तो चित्र है, लेकिन वो चित्र जीते जागते कौन थे, हनुमान। और ऐसे डरा दे रहा, तो ऐसे कुछ आवाज करते हैं, ऐसे कुछ शब्द करते हैं, तो जिससे शत्रु पक्ष उनका कांपने लगा, धड़कता था उनका दिल। तो ये कोई निष्क्रिय ऐसा पेंटिंग डेड ऐसा पड़ा नहीं था वो हनुमान जी का, और सजीव हनुमान वहां से हिलते नहीं थे, वहां से कहीं कूद के गए और कुछ किया, रथ को फेंक दिया इधर उधर, ऐसा जैसा अशोक वन में उन्होंने किया ऐसा नहीं किया, वही बैठे थे ध्वजा पर, लेकिन बहुत सहायता की। जो करेज होता है, धीर होता है ना, योद्धा को धीरज की आवश्यकता है, धीर गंभीर, तो उसको ही तोड़ देते थे हनुमान। फिर जब संस्कृत हस्त गांडीवम, संस्कृत हस्त गांडी तो मेरे हाथ से छूट रहा, ना ना युद्ध करो, हाथ में भी नहीं आ रहा गांडी। किसने कहा, अर्जुन ने कहा, मुखम च परिशुष्यते, मेरा गला सूख रहा है और आप फिर मुझे युद्ध करो। तो हनुमान जी भी वहां बैठे बैठे गला सुखा देते थे या किसी का दिल को में कंपन करा देते थे, भयभीत करते थे। वो हाथ से गदा या धनुष बाण धारण करना मुश्किल होता था। जय हनुमान। तो हनुमान जी भी पुनः, हनुमान भगवान नहीं है, है भगवान, समझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसा राम भी भगवान है, हनुमान भी भगवान है, जो भी सुख संपत्ति घर आवे, जो भी मदद करेगा, धनम देही जनम देही सुंदरीम देही देही देही, वैसे हनुमान के पास हम हनुमान जब समाचार लेके गए, पहुंच गए अयोध्या में, हाँ राम आ ही रहे हैं, ये समाचार जब भरत ने सुना तो इट वॉज लाइक अ म्यूजिक, म्यूजिक टू माई ईयर्स, तुम जो भी कह रहे हो ये मेरा संगीत है,
मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्या राम आए और तुमने समाचार लाए राम के आगमन का, चलो मैं तुम्हारा मुंह क्या करता हूं, मीठा करता हूं। ऐसे उन्होंने नहीं कहा था, वैसे ऐसी पद्धति है। कोई गुड न्यूज लेके आता है तो क्या हम उसका मुंह मीठा करना चाहते हैं, कोई बैड न्यूज लाया तो थप्पड़ देना चाहेंगे हम। तो हनुमान जी पर प्रसन्न हमारे भरत जी, राय मैं बड़ा प्रसन्न हूं आपसे, इतनी सारी गायलो इतनी सारा, तो उन्होंने जो जो भेंट में दे रहे थे देना चाह रहे थे उन्होंने कि हमारे पास तो आपके लिए कुछ 11 कन्याएं भी है विवाह योग्य, स्वीकार कीजिए विवाह योग्य। और 1, 2, नहीं 10, 11 ऐसी कुछ भरत जी विवाह योग्य कन्याएं देना चाहते दान में किसको, ब्रह्मचारी हनुमान जी को, एक श्रेष्ठ ब्रह्मचारी थे हनुमान। एक तो हनुमान और फिर लक्ष्मण भी गृहस्थ होते हुए उसे ब्रह्मचारी आराधना करते हैं, कुछ आदर्श पुरुष है ब्रह्मचारियों के लिए। हनुमान तो है ही, लक्ष्मण भी है और भीष्म पितामह भी है, ऐसे कुछ व्यक्तित्व है अपने ब्रह्मचर्य के लिए जो सुप्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। वाह, लक्ष्मण ने भी कल रात्रि को हम लोग पहचान, तुम पहचान सकते हो क्या, नहीं नहीं मैं तो पहचान नहीं, कुंडल सीता के चेहरे की वो मैं थोड़े ही देखता था और फिर कान में कैसे कुंडल, और नहीं नहीं मैं पहचान नहीं सकता, ना जाना मी कुंडले, अरे केयूर तो देखो कि मैं बाजूबंद थोड़े ही देखता था, फिर ये देखो ये देखो, हाँ हाँ हाँ, और ये तो सीता के तो क्या पैंजन है, क्या नुपुर है, क्योंकि मैं क्या करता था नित्य पादाभिवंदनी, नित्य प्रति सीता माता के चरणों का मैं दर्शन करता था, तो चरणों में पहने हुए नुपुर कहाँ है, ये तो मैं कंफर्म बात है, ये सीता के ही। तो माताओं की ओर देखना है तो उनके चरणों में देखो, ये उनकी पूजा है, मातृवत परदारेषु, ये सिखाए हनुमान भी सिखाए और लक्ष्मण भी सिखाए और राम भी सिखाए। राम भी केवल एक पत्नी, मातृवत परदारेषु, अपनी दारा तो ठीक है अपनी पत्नी है, लेकिन परदारा मात्रवत, अन्य सारी दाराएं स्त्रिया माता के समान, तो इन तीनों ने भी वैसे सभी राम के, राम लक्ष्मण हनुमान या शत्रुघ्न या भरत और कितने सारे, वैसे उस समय हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते किस प्रकार का उनका विचार, पवित्र विचार के, बड़े सदाचारी, एक दो नहीं जनता के सभी लोग धर्म के अनुसार अपना जीवन, इसीलिए रामराज कहलाता था, इसीलिए रामायण में लिखा त्रेता युग होते हुए सतयुग का अनुभव कर रहे थे, उनके मन में भी विचार नहीं आता था पाप का विचार, फिर मन से फिर मुख में आना और फिर मन और मुख के बाद हाथ और पैर और इंद्रियों में पाप का प्रवेश, ये तो संभव ही नहीं, मन में भी नहीं आता था पाप, तो पहले मन में सूक्ष्म
चंचु प्रवेश मुशल प्रवेश, चंचु मतलब चोच, थोड़ा सा प्रवेश दिया पाप के विचार, पाप को विचार के मां के रूप में ही, तो धीरे धीरे मुसल बनता है। पहले होता है कुसल, आप समझते हो, आपको गांव का गांव वाला होना पड़ेगा तब कुसल समझते आप, आपको तो मुसल भी नहीं समझेगा तो कुसल कहां से समझोगे। कुसल तो कुसल के रूप में चंचु प्रवेश, थोड़ा प्रवेश, भटाला दिली ओसरी भट, तो ऐसा है ये पाप का विचार, थोड़ा सा प्रवेश करने दिया तो धीरे धीरे हाथ और पैर और सारा फैलाता है, टेक ओवर करेगा। तो लेकिन राम के समय के तो केवल राम और लक्ष्मण ये ही नहीं, या हनुमान ही नहीं, अन्य सारे लोग भी भक्त, ये सभी भक्त थे, ब्राह्मण अच्छे कूल के और सभी जेंटलमैन और माताएं, ऐसा भाव भी दूसरों के प्रति, स्नेह दूसरों के प्रति उसी प्रकार का हुआ करता था। तो कल तो हम लोग पढ़ रहे थे कोई मरना नहीं चाहता था तो मरो मत, मरना नहीं चाहते हो ठीक है जीते रहो। और ऐसा भी नहीं होता था कि मां बाप जीवित है और बेटे की मृत्यु हुई है, बिटिया मर गई, अब तो हम उनको जन्म के बाद मरने की बात तो दूर रही, हम लोग वो जन्म के पहले ही उसको मार देते हैं। देखिए कहां से कहां जमाना पहुंच गया, जब बालक क्या है, हेल्पलेस स्थिति में है, असहाय है, तो बड़ी टीम लेती है, पहुंच जाती है, बड़े डॉक्टर आ गए और सारी लीगल सिस्टम भी है संविधान में, यस यस, अबॉर्शन गर्भपात तो लीगल है, वो भी टीम है और भी सोशल वर्कर्स है और सब मॉडर्न फैसिलिटी भी है, क्या करने के लिए, मारो गोली, लक्ष्य क्या है, उस बालक की हत्या करनी है। और डिक्लेयर क्या करना है, इसका कोई पाप तो छोड़ ही दो, इसको अटक नहीं होगी, इसको कोई कैद नहीं होगी, कोई दंड नहीं होगा, सरकार ने इसको लीगलाइज्ड, तो उसको जन्म भी नहीं लेने दे रहा आज का बालकों को, पुत्रों को, या विशेष अगर कोई पुत्री भी है तो फिर चांसेस कम ही है। लेकिन राम के समय फुल लेंथ, आपका कितना जी सकते थे आप, फुल जी भर के जियो, जितना चाहे जीते रहो जी भर के, वैसे 10,000 का आयु का समय भी था, सभी लोगों की आयु कितनी, 10,000 वर्षों तक, सतयुग में 1,00,000, त्रेतायुग में 10,000, द्वापर में 1,000 और कलयुग में 100। तो ये इसी के साथ वैसे तमोगुण के साथ, कि तमोगुण जो है वो क्षति पहुंचाता है, क्या तमोगुण का कार्य है प्रलय, प्रलय तो बहुत मोटी बात है, लेकिन छोटे मोटे प्रलय होते, डिस्ट्रक्शन, विनाश, विनाश किस गुण का कार्य है? तमगुण का है। तो तमगुण का लेश भी नहीं था सत्य युग में, और थोड़ा सा फिर प्रवेश होता है त्रेता युग में, और उसकी मात्रा बढ़ती है द्वापर युग में, और कलयुग में उसी की प्रधानता होने के कारण विनाशी विनाश होता रहता है कई प्रकार का। हेल्थ, स्मृति, हमारी आयु घटती और मिटती रहती है। राम के समय ऐसा नहीं था, स्वयं राम राजा थे और धर्म की स्थापना हेतु प्रकट हुए थे। कितना विशेष काल था, सुवर्ण काल था। और देखिए ना, ये सारे भक्त, कितना अवसर था उनको। स्पृष्टो यही, ये भक्त स्पर्श किया करते थे भगवान को, स्पर्श करते थे। अभिदृष्ट, दृष्टि, देखते थे भगवान को। तो केवल देखते ही नहीं थे, निहारते थे भगवान को। देखना एक बात है, वो एक्सरसाइज हो गया, आंखों का व्यायाम या कसरत हुई, ओपनिंग क्लोजिंग आई, लेकिन निहारना जो होता है, भक्त भगवान को निहारते हैं। तो दृष्टि में क्या करते हैं? प्रेमांजन डालते हैं, प्रेमांजन युक्त दृष्टि, स्नेह भरा दिल, और फिर देखते हैं भगवान को। लेकिन हम लोग अभिनेता को निहारते हैं और भगवान को देखते हैं, समझे? फिर आप समझोगे इन शब्दों में कहने से समझ में आएगा। हम निहारते हैं अभिनेता अभिनेत्री को, निहारते हैं, और राधा रानी को केवल देखते ही है। इसका उल्टा करना होगा। संसार के लोगों को क्या करो? देखो, और भगवान को निहारो। थावर जंगम देखी ना देखी तार मूर्ति, भगवान के जो पहुंचे हुए भक्त, शुद्ध भक्त, राम के समय के भक्त भी जो राम को देख रहे थे। स्थावर जंगम देखी ना देखी तार मूर्ति, कहीं जा रहे हैं भ्रमण में, तो सामने हमने सामने इधर उधर क्या है, कई सारे रूप है, फॉर्म्स है। थावर जंगम देखी ना देखी तार मूर्ति, उसको हाँ देख लिया, यहां कार है इसीलिए, वैसे जाना है तो फिर थोड़ा डायवर्जन लेके जाना होगा ना, कार के टकरा तो नहीं है। तुम ऐसा भक्त क्या करेगा, थोड़ा घूम के जाएगा। लेकिन दूसरा भक्त क्या करेगा? हाँ कार है, लेटेस्ट मॉडल, रुकेगा, मेरा चश्मा ला, उसको निहारेगा, कौन सा मॉडल है, खोल के देखेगा, द लेटेस्ट फिटिंग्स और माउंटिंग्स और क्या क्या अटैचमेंट्स, घूम के देखेगा, परिक्रमा करेगा, मुड़ मुड़ के देखेगा, फिर जा रहा तो मुड़ मुड़ के पीछे मुड़ मुड़ के देखेगा। वैसे जाना नहीं चाहेगा, लेकिन कोई विवशता है तो जाएगा, तो कोई कार है तो कोई और रूप है, स्थावर जंगम। तो हम लोग क्या करते हैं? इस संसार के कलयुग के लोग जो पतित है, भ्रमित है, ऐसे रूपों को देखते हैं या पीते हैं या निहारते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, उसको चूमते हैं, किस ऐसे कुछ फॉर्म्स, उसमें भी फिर कोई स्त्री का फॉर्म है, पुरुष का फॉर्म, स्थावर जंगम देखी ना देखी तार मूर्ति, सर्वत्र है इष्ट देवेर स्फूर्ति। प्राण के जो भक्त, शुद्ध भक्त, उनको तो इष्ट देव की स्फूर्ति होती है, राम की स्फूर्ति, राम कॉन्शियसनेस, या कृष्ण की स्फूर्ति, जहां भी जाते हैं कृष्ण की स्फूर्ति, चैतन्य महाप्रभु उनको स्फूर्त कर रहे हैं। स्थावर जंगम देखी, ये वचन चैतन्य महाप्रभु ने कहे, रामानंद राय को कहे, ऐ आप जो पहले आए थे तो आप तो सन्यासी थे, सन्यासी के रूप में आपको मैंने देखा था, लेकिन अब धीरे धीरे मैं, हम लोग कुछ दिन आपके साथ है, मिलना जुलना अभी तो हुआ है, आपका ये कृष्ण रूप कैसे बन गया, अपने रूप को मैं परिवर्तन किया क्या, और आपके भगवे वस्त्र कहां है, आप तो पीतांबर पहने हो, ऐसे रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को कह रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने नहीं, क्या कह रहा हो कि तुम तो इतने भगवान के, कृष्ण के उच्च कोटि के भक्त हो, इसीलिए वैसे तुम जिसको भी देखते हो उनमें किसको देखते हैं, उस व्यक्ति को तुम क्या समझते हो, शायद ये कृष्ण ही है, ये श्याम सुंदर ही है। सावर जंगम देखी ना देखी तार मूर्ति, और सर्वत्र है इष्ट देवेर स्फूर्ति। तुमको तो अपने इष्ट देव, आ तुम कृष्ण, तुम्हारे इष्ट देव है, इसीलिए तुमको ये कृष्ण ही कृष्ण जहां तहां दिखाई दे रहा, मुझे भी तुम देखते हो तो तुम सोच रहे हो, वैसे ऐसी बात नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, लेकिन वैसे हकीकत क्या थी, क्या थी हकीकत, इसको हम लोग भागवत कथा दिसंबर महीने में जब होगी तो हम लोग प्रातःकालीन सत्र में ये चर्चा का विषय है, रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का संवाद, उनका मिलन और कई अद्भुत बातें, सिद्धांत निरूपण विचार होगा, तो इसको पूरा ही कर देते हैं एक आधा मिनट में, एक मिनट में। तो बात ये थी कि चैतन्य महाप्रभु तो सन्यासी बन के जा रहे, दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, तो दोनों का जब मिलन हुआ आंध्र प्रदेश में एक स्थान है, ये सन्यासी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सन्यास की तो भूमिका निभा रहे थे, लेकिन थे कौन, है कौन, वे कृष्ण ही है। लेकिन तो इस बात को चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय जैसे भक्त से इस बात को छिपा नहीं सकते, छिपा नहीं पाए, क्योंकि यह रामानंद राय स्वयं ही कौन थे, विशाखा, ललिता विशाखा आदि यत भक्त सखी वृंद, तो ललिता विशाखा जैसे कई अष्ट सखिया भी है, तो वो ललिता और विशाखा में से जो विशाखा है, विशाखा प्रकट हुई थी किस रूप में, रामानंद राय। तो विशाखा जब देखेगी चैतन्य महाप्रभु की ओर, तो सन्यासी को थोड़ी देखेगी, किसको देखेगी, कृष्ण को देखेगी। और एक समय केवल कृष्ण को ही नहीं, कृष्ण के साथ वे राधा को भी देख रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा तो हुआ क्या, क्या देख रहा हूं मैं, हम जब पहली बार मिले तो सन्यासी थे, लेकिन आप तो आप और ही कुछ हो। लेकिन इस बात को छिपाने हेतु चैतन्य महाप्रभु भक्तावतार तो अपनी भगवत्ता का प्रकाश नहीं करना चाहते थे, तो भी कभी कभी ये बात थोड़ी लीक आउट हो जाती थी, छिपाने का प्रयास के उपरांत भी असफल हो जाते थे। कुछ भक्तों का ऐसा भाव ही है। फिर भगवान राधा कृष्ण के रूप में प्रकट होते थे, यहां प्रकट हुए, रामानंद राय को विशेष दर्शन दिया, तो हुआ तो रामानंद राय की जो मन की स्थिति, उनकी जो भावना, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो विकास, अति विकसित उनकी कृष्ण भावना, तो उस मनस्थिति में वे क्या देखेंगे, वैसा और वस्तुओं को पदार्थों को ज्यादा ध्यानपूर्वक देखते ही नहीं थे। सावर जंगम देखी ना देखी तार मूर्ति, या हम लोग समझा रहे थे शायद देखते होंगे लेकिन निहारते नहीं थे। तो आज से आप लोग ये निहारना बंद करो, निहारना केवल रिजर्व रखो, किसके लिए, किनके लिए, भगवान के लिए। प्यार की नजर से, स्नेह से देखना है, कृष्ण को देखो, भगवान के भक्तों को भी देख सकते हैं, लेकिन औरों को नहीं देखना ही अच्छा है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकली देखना पड़ता है, तो फिर देखो लेकिन निहारना नहीं, विड्रॉ करो, वेस्ट मत करो अपना स्नेह, अपना लव जो है, प्रेम जो है, भगवान के लिए प्रेम, भगवान के भक्तों के लिए प्रेम। श्लोक में तो ये भक्त भगवान को देखते थे की बात आई, संविष्टो अभिदृष्टो, तो स्पृष्टो अभिदृष्टो संविष्टो, अच्छे अच्छे शब्द है, बहुत सुंदर शब्द। स्पर्श करते थे, देखते थे, संविष्टो भगवान के साथ भोजन करते थे, शयन भी करते थे कुछ अंतरंग भक्त, अनुगतः या उनका अनुगमन करते थे, कोई सेवा करते थे, प्रयास करने वाले भक्त, ये यू गए राम के धाम, गए राम भी गए और राम के साथ ऐसे ऐसे ये सेवा उनके कार्यकलाप वाले भक्त भी भगवान के धाम लौटे। तो आप यह हम शायद सोचेंगे कितने अभागी है हम, कितना अच्छा होता, क्या कितना अच्छा होता, फिल इन द ब्लैंक्स, कितना अच्छा होगा। हम भी भगवान के साथ लौट जाते, लेकिन लौट जाने के पहले कितना अच्छा होता कि हम क्या करते, अयोध्या में भगवान के साथ होते तो कितना अच्छा होता। तो फिर जाते ही, फिर उनके साथ ही जाते, और कहां जाते। लेकिन ये तो इतना कितना अच्छा होता, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या कर सकते इस स्थिति में, क्या कर सकते। ऐसा हुआ, अच्छा होता, अच्छा होता तो अच्छा, लेकिन हुआ तो नहीं, तो अब क्या करें, क्या कर सकते हैं। हम लोग भगवान का नाम ले सकते, या प्रभुपाद भी कहते हैं कृष्ण के समय हम होते तो, अर्जुन ने जैसे गीता सीधे भगवान से सुनी तो हम भी सुनते तो अच्छा होता, सीधे भगवान हमको ही गीता सुनाते, लेकिन वैसे सुनाएंगे नहीं आपको, या आप उस वक्त थे भी नहीं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि हमको अभागी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि गीता भगवान ने अर्जुन को किस लिए सुनाई, ताकि भविष्य में हम लोग उस गीता से लाभान्वित होंगे। अर्जुन के लिए गीता का उपदेश थोड़ी आवश्यक था, गीता का उपदेश देते देते ही भगवान ने क्या कहा, भक्तों सी मैं, तुम तो मेरे भक्त हो। भगवान ने जब घोषित किया ऐसे भक्त को गीता जैसा उपदेश, ये तो ABC है, ये तो PhD के कैंडिडेट अर्जुन, उनको गीता सुनने से, लेकिन सुनाना चाहते थे हम लोगों को। लेकी बोले सुने लागे, अगर ये समझ सकते हैं आप लोग, लेकी बोले सुने लागे, तो सुन कौन, हम लोग सुन भाई, और लेक कौन, अर्जुन को सुनाया, सुनाना चाहते थे भगवान किसको, हमको। नहीं बहू आई है तो डांटेंगे फटकारेंगे तो क्या समझेगी बेचारी, मायके लौटने का ही सोचेगी। इसीलिए जो चालाक सास होती है अपने बहू को कुछ सबक सिखानी है तो क्या करती है, अपने बेटी को डायरेक्ट, तुमने ऐसे किया, समझ नहीं आता, उसका उतना कसूर नहीं होते हुए भी उसको, लेकिन सुनाना किसको चाहती है, सुन भाई को, बहू को। तो उसी प्रकार गीता का उपदेश तो हम लोगों के लिए, तो शोक करने की बात ही क्या, हम लोगों के लिए तो भगवान ने गीता सुनाई अर्जुन को, तो उस वक्त सुने नहीं सुने, सुने होते तो अच्छा होता, लेकिन नहीं सुने नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं, आज सुनो, ऐसे प्रभुपाद समझाते हैं। तो अच्छा होता हम भी अयोध्या में होते तो, अच्छा होता हम भी राम के साथ उस समय जाते तो, लेकिन नहीं गए तो क्या कर सकते, ये सारे पर्व है, एक के बाद एक उपरांत आते रहते हैं, ऐसे उत्सव पर्व में सम्मिलित हो जाओ, भगवान का स्मरण करो, भगवान के विग्रह की स्थापना करो, और जो जो अयोध्या के भक्त करते थे हम भी कर सकते कि नहीं, देखो स्पर्श किया उन्होंने, क्या हम स्पर्श कर सकते हैं, विग्रह को स्पर्श कर सकते हैं, भगवान के विग्रह को स्पर्श अभिदृष्टा, देखा जा सकता है कि नहीं, देख भी सकते हैं, संविष्टा उनके साथ भोजन और शयन थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन उन्हीं का खाया हुआ भोजन हम लोग खाते हैं, उन्हीं के उसी घर में रहते हैं हम लोग, भगवान जिस घर में रहते उसी घर में हम लोग भी रहते हैं, भगवान को सुलाते हैं और हम भी सो जाते हैं, भगवान को जगाते हैं, फिर हम जग जाते हैं क्या? नहीं, जब तक हम नहीं जगाएंगे वे जगते ही नहीं है। तो हुआ, और अनुगतः नौकरों की भांति पीछे पीछे चलते थे राम के समय के भक्त, तो हम लोग भी उनकी नौकरी चाकरी। अब भी कर सकते हैं, तो सुनहरा अवसर हमको भगवान ने दिया है कि मनुष्य शरीर दिया और भगवत प्राप्ति राम कृष्ण प्राप्ति का विचार मन में भगवान ने दिया और इसकी पूर्ति हेतु ये सारी व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना भी हुई है, तो ये क्या कुछ कम भाग्य वाली बात है क्या? कितने भाग्यवान हैं हम, यहां तक पहुंचाए भगवान। अब कुछ हमारा शेष कार्य, जैसे ये करते थे प्रगट लीला में, प्रगट लीला में जो सेवा किए, तो भगवान का अर्च विग्रह भी भगवान का अवतार ही माना जाता है, इनकार्नेशन, अर्च विग्रह। अर्च विग्रह साक्षात भगवान, तो उनकी सेवा, उनका स्मरण, उनका उनका भोजन प्रसाद खाओ, सैयन्नामृत पाओ, और फिर राधा कृष्ण गुण गाओ, और फिर सो जाओ। नाचो गाओ खाओ, प्रभुपाद कहा करते थे। कृष्ण भावना कितनी सरल है, मधुर है। नाचो गाओ खाओ, फिर बैठो, कुछ कथा सुनो सुनाओ। जय श्री राम,
जय श्री राम,
श्री राम। अगर मुझे दिल्ली जाना है तो लौटना होगा। अच्छा।